आशुतोष को हमेशा से आशिका के जाने का दुख था, लेकिन अब वो दुख पछतावे में बदल चुका था जब उनकी आंखों के सामने आकाश आशिका को लेकर चला गया और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। अगर आशिका के मोबाइल में उन्होंने आशिका की तस्वीरें नहीं देखी होती तो उन्हें कभी यकीन नहीं होता कि आशिका उन्हीं की बेटी है। वो आशिका के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। ऐसे में सिर्फ अभिमान ही उन्हें आशिका के बारे में बता सकता था, जिसने पिछले कुछ महीने आशिका के साथ बिताए थे। आशुतोष ने अभिमान को घर पर मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि अभिमान आशुतोष से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने आशिका पर सवाल उठाए थे, फिर भी उनके दुख को समझते हुए वो उनसे मिलने चला गया था। उनके स्टडी रूम में आते ही अभिमान ने देखा कि आशुतोष आशिका के मोबाइल में कुछ फोटोज देख रहे थे। जब उन्होंने इमेज को स्वाइप किया तो सामने मौजूद फोटो देखकर अभिमान को झटका सा लगा। वो कुछ कदम पीछे हो गया था, फिर अचानक जल्दी से दौड़कर आया और स्क्रीन पर हाथ रख दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकती है, अभिमान ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। आशुतोष अभिमान की तरफ घूर कर देख रहे थे, जबकि अभिमान ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि आशिका उसके सोते वक्त या उनके कुछ इंटिमेट मोमेंट्स की फोटोज क्लिक कर लेगी। स्क्रीन पर जो फोटो थी उसमें अभिमान सोया हुआ था और आशिका उसके होठों पर किस कर रही थी। न जाने उसने क्या सोचा जो उसने अभिमान के साथ उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। उसका मोबाइल अब तक अनलॉक क्यों है, अभिमान चिढ़ते हुए बोला। हाँ, हैरानी तो मुझे भी हुई थी, फिर बाद में पता चला कि इस पर स्क्रीन लॉक लगाया हुआ ही नहीं था। अजीब बात है, कोई अपने मोबाइल को बिना पासवर्ड लगाए ऐसे ही कैसे छोड़ सकता है, आशुतोष ने भौहें से कोड़कर कहा। एक पल के लिए अभिमान को भी उनकी बात पर हैरानी हुई। उसने जल्दी से आशिका के मोबाइल को चेक किया तो उसमें सच में किसी तरह का लॉक नहीं लगा हुआ था, पर साथ ही उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसके बाद उसको किसी पासवर्ड या सिक्योरिटी की जरूरत पड़े। अभिमान ने मन ही मन कहा, तो ऐश ने अपने मोबाइल में ऐसा कोई भी डेटा सेव नहीं कर रखा था जो उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे। वो अपना सारा काम डेस्कटॉप या इनक्रिप्टेड स्क्रीन पर ही करती थी। अभिमान बिल्कुल चुप था। उसके कोई जवाब न देने पर आशुतोष ने सख्त और तेज आवाज में कहा, क्या सोच रहे हो, इस फोन में ऐसा कुछ नहीं है। लगता है वो सिर्फ कॉलिंग और फोटोज क्लिक करने के लिए यूज करती थी, और थोड़ी बहुत म्यूजिक फाइल्स भी हैं। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट्स भी सेव नहीं किए गए हैं और कॉल हिस्ट्री भी सेव नहीं होती है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। आशिका के फ़ोन में भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसके फ़ोन के फीचर्स ऐसे थे जो कि कभी किसी मोबाइल में इनबिल्ट होकर नहीं आते थे। अभिमान को इसके पीछे का कारण समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि आशिका के लिए ये बाएं हाथ का काम था। आशुतोष के लिए ये सब चीज़ें नहीं थीं और उन्हें हैरानी में डाल रही थीं। वो इस बारे में ज़्यादा बात ना करें, ये सोचकर अभिमान ने तुरंत आशुतोष की तरफ देखकर कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दूसरी बात, उसके मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए जब वो आएगी तो, अभिमान बोल रहा था तभी आशुतोष ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वो आएगी तब मैं उसे खुद दे दूंगा। अभिमान ने उनके आगे किसी तरह की जिद नहीं की। आशुतोष खड़े हुए और स्टडी रूम में लगी कॉफी मशीन से उन लोगों के लिए कॉफी बनाने लगे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। इस दौरान आशी अभिमान और आशुतोष की बातें सुनने के लिए स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अंदर की खामोशी उसे उलझन में डाल रही थी। क्या इन दोनों को हमारी में शादी की बात नहीं करनी चाहिए, या किसी तरह की बहस। जब भी अभिमान और डैड एक दूसरे के सामने आते हैं तो कभी नॉर्मली बात नहीं करते हैं, फिर सब कुछ इतना शांत शांत क्यों है, आशी ने मन ही मन कहा। उसने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा खटखटाया। आशी ने खुद बखुद दरवाजा खोल लिया था। आशुतोष और अभिमान का ध्यान तुरंत दरवाजे की तरफ गया तो वहां आशी खड़ी हुई थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कराहट थी। आशी को अचानक सामने देखकर आशुतोष ने जल्दी से आशिका का मोबाइल अपने पॉकेट में डाल लिया था। फिर वो कॉफी के कप के साथ डेस्क के पास गया। उसने एक कॉफी का कप अभिमान के सामने रख दिया था। उसके बाद आशुतोष ने आशी की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, हम बिजनेस रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए मैंने अभिमान को यहाँ बुलाया है। क्या मैं भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हूँ, मैं बहुत दिनों से ज्वाइन करने के बारे में सोच ही रही थी, आशी अंदर आते हुए बोली। नहीं, आशुतोष ने तुरंत मना कर दिया, जिसे सुनकर आशी को झटका सा लगा। उसके चेहरे के भावों को देखकर आशुतोष ने नरम लहजे में कहा, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसमें और भी क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हें एज इंटर्न ज्वाइन करना होगा, और इस लेवल का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए तुम्हें पहले काफ़ी कुछ सीखना है। आशी ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो वहाँ पर बैठती उससे पहले आशुतोष ने कहा, चलो अब जाकर सो जाओ, ये मीटिंग लंबी चलने वाली है, और हो सके तो अपनी मॉम के रूम में सो जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। काजल का नाम आने पर आशी मना भी नहीं कर पाई और उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ा। आशुतोष भी उनके साथ खड़े हुए और जब उन्हें लगा कि आशी काजल के कमरे में चली गई है तब वो दरवाजा बंद करके वापस अभिमान के पास आ गए थे। तो अभी तक आपने उसे कुछ नहीं बताया है, अभिमान बोला। उनकी बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि आशिका के बारे में वो अब तक अनजान है। आशिका यहाँ नहीं है तो मुझे बताना ठीक नहीं लगा, आशुतोष बोले। आपने बिल्कुल सही किया, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है और खासकर आपकी बेटी पर, जो मुझे और आशिका को अलग करने के लिए तृप्ति बजाज जैसी औरत की हेल्प लेती है, अभिमान ने तंज भरे लहजे में कहा। आशुतोष ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर झुंझलाकर बोले, तुम बार बार बात को घुमा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ आशिका के बारे में जानने के लिए बुलाया है, जबकि तुम्हें उसे छोड़कर बाकी सभी बातें करनी है। मुझे उसके बारे में बताओ, वो तुम्हारे साथ काम करती थी ना, वो क्या करती है? तृप्ति ने उसे घर से निकाल दिया था, क्या उसकी एजुकेशन कम्प्लीट हुई थी? उसका बिहेवियर कैसा है? बात करने में वो थोड़ी कोल्ड लगती है और मुझे लगता है वो अपनी माँ की तरह शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता। क्या वो सबसे प्यार से पेश आती है? मैंने महसूस किया कि वो थोड़ी सी बदतमीज, नहीं बदतमीज कहना गलत होगा, बस जो दिल में होता है वो बोल देती है। आशुतोष हड़बड़ाकर अभिमान से आशिका के बारे में पूछे जा रहे थे, मानो आज की रात में ही सब कुछ जान लेना चाहते हों। उनके सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और उनके अजीब सवाल सुनकर अभिमान हंस पड़ा था। उसकी इस हरकत पर आशुतोष ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने क्या तुम्हें कोई जोक सुनाया है जो तुम हंस रहे हो? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ, वो कैसी है? वो तृप्ति के आसपास नहीं रही है तो मुझे खुशी है कि तृप्ति का उस पर असर नहीं हुआ, अभिमान ने गहरी सांस ली। वो धीमी आवाज में बोला, मैं सोच रहा हूँ कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं ना। मुझे अच्छे से याद है जब हम दोनों की शादी हुई थी तब अगले दिन आप उससे मिले थे और उसे भला बुरा कह रहे थे। उससे पहले भी जब मैं बीमार होकर अस्पताल में पहुंचा था तब आपने आशिका को काफी कुछ सुनाया था। अब आपको पता चला कि वो आपकी बेटी है तो आप उसे बदतमीज तक नहीं कहना चाहते हैं। मैंने तुमसे ताने सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, आशुतोष ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ, अभिमान बेपरवाही से बोला और उठने को हुआ तभी आशुतोष ने उसे जबरदस्ती खींचकर वापस बिठा दिया था।
प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ, इस बार आशुतोष ने नरम लहजे में कहा। आपकी कुछ कुछ बातें बिल्कुल सही हैं मिस्टर सिन्हानिया, अभिमान ने गहरी आवाज में कहा। हाँ वो बहुत कोल्ड है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उसके आते ही आप उसे ये बताएंगे कि आप उसकी फैमिली हैं और बचपन की यादें याद दिलाकर सब ठीक करने की कोशिश करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो सबसे पहले आप अपने बबल से बाहर आइए। आप जैसा सोच रहे हैं आशिका वैसी नहीं है, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं है और इतने सालों में उसने जो भी सब सहन किया है उसके बाद वो अपने इमोशंस आसानी से किसी को बता नहीं पाती है एवं कई बार तो खुद भी फील नहीं कर पाती। उसके लिए उसकी इमोशंस, प्यारी फैमिली, सब उसका काम है। अभिमान की बातें सुनकर आशुतोष को झटका सा लगा, साथ ही उनकी मुठ्ठियाँ भीज गई थीं क्योंकि उन्हें तृप्ति पर गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब कुछ ठीक से फील नहीं कर पाती? वो तुमसे तो प्यार करती होगी ना, आशुतोष ने भर्राई आवाज में कहा। अभिमान के चेहरे पर भी मायूसी के भाव उभर आए थे और उसने नामे सिर हिला दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो मुझे प्यार करती है, लेकिन हाँ ये जरूर कहती थी कि उसे मेरे साथ अच्छा फील होता है। उसे पसंद नहीं है जो कोई उस पर और उसके काम पर उंगली उठाए और उसकी इंसल्ट करे, और आपने बार बार यही किया है तो आपके लिए तो चीज़ें और भी मुश्किल होने वाली हैं। तुम मुझे डरा रहे हो, आशुतोष ने जल्दी से कहा। डरा नहीं रहा, बस सच बता रहा हूँ, अभिमान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। आशुतोष की आंखें नम होने लगी थीं। अभिमान के बताने पर उन्हें एहसास हुआ कि आशिका सच में पूरी तरह बदल गई थी। बचपन में उसका कमरा बिल्कुल किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह होता था और कपड़े भी वो ज़्यादातर प्रिंसेस की तरह पहनना पसंद करती थी। बचपन में वो अपने खेल में सबको शामिल कर लेती थी। अगर इमोशन जाहिर करने की बात थी तो वो आशुतोष और काजल को देखते ही उनकी गोद में चढ़ जाती थी और न जाने उन्हें कितनी बार ये कहती कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। आशिका के कपड़ों से लेकर उसके बर्ताव तक में फर्क आ गया था। आशुतोष की आंखों में आंसू देखकर अभिमान को उनके लिए बुरा लगा और उसने गहरी सांस ली। उसने आशुतोष के हाथ को सहलाते हुए कहा, बड़े होने पर लोग अक्सर बदल जाते हैं, बचपन में जो चीज़ पसंद होती है वो बाद में नहीं पसंद आती है। झूठी तसल्ली मत दो, आशी को मेरी आशिका की लाइफ मिली, वो बिल्कुल उसी की तरह है, उसे सजना संवरना पसंद है और वो पूरी अटेंशन चाहती है, सब उससे प्यार करें और उसके आसपास रहें। अगर आशिका हमारे घर में पली बढ़ी होती तो वो भी ऐसी ही होती, ये सब उसे तृप्ति ने हमसे बदला लेने के लिए किया है, आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा। आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, पर हाँ अब वो बदल गई है और मुझे उसके इस बदलाव से दिक्कत भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी उसे वैसे ही प्यार करें जैसे वो है, आप उसकी पर्सनैलिटी और उसे एक्सेप्ट करेंगे तो क्या पता कल को वो भी आपकी मजबूरी को समझते हुए आपको एक्सेप्ट कर ले। अभिमान ने उन्हें समझाया। आशुतोष ने उसकी बात पर सिर हिला दिया था। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, अच्छा उसे खाने में क्या पसंद है? जो भी आप उसके सामने बनाकर रखेंगे वो खा लेगी, लेकिन हाँ उससे भी बेहतर ये होगा कि जब वो काम कर रही हो तो उसे अपने हाथों को भी कष्ट ना देना पड़े और कोई उसे अपने हाथों से खिला दे तो और भी अच्छा होगा, वरना वो काम करते टाइम अपने खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखती है। ऐसी एक आदत उसकी आपसे ही आई है कि वो बहुत जिद्दी है और किसी की नहीं सुनती, अभिमान ने जवाब दिया। अब वो भी आशुतोष की तरह कड़वा रुख अपनाने के बजाय आराम से जवाब दे रहा था। काजल सुनेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे मुझ पर गए हैं, यज्ञ और यज्ञ। आखिर उसके दिल का एहसास सही साबित हुआ। उसे हमेशा से लगता था कि आशिका जिंदा है। आशुतोष खुश होकर बोले। अभिमान उनसे काफी देर तक बात की और फिर घर चला गया था। हालांकि आशुतोष ने अभी भी आशिका का मोबाइल देने से मना कर दिया था और अभिमान को किसी बात का डर भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आशिका गर्व और उसकी टीम के साथ थी। उन्होंने हेलीकॉप्टर को एक सेफ जगह पर लैंड किया और फिर वहां से वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट ली। एक लंबा सफर तय करने के बाद अगले दिन रात के 11 बजे के करीब आशिका गर्व के साथ एजेंसी ऑफिस पहुंच चुकी थी। वहां सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे और किसी ने भी गर्दन उठाकर ये देखने की जरूरत नहीं की कि कौन आया हुआ था। दूसरी बात, वहां सब ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। आशिका गर्व के साथ सीधा अथॉरिटी के ऑफिस जा रही थी। हालांकि आते ही आशिका को काम करना था, लेकिन रेहान ने उसे इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था और उसकी देरी से आने की वजह से वो उससे गुस्सा थे। ऊपर से गर्व ने पहले ही उनकी शर्त आशिका को बता दी थी। अगर आशिका खुद से चलकर आती तो शायद काम पूरा होने के बाद उसे वापस जाने दिया जाता, लेकिन उन्होंने आशिका को ढूंढा था तो अब आशिका को उनके एजेंसी में रहकर हमेशा के लिए काम करना था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर आशुतोष, डिलुलू इज ओनली सलुलू। क्या आशिका खुद का पॉइंट प्रूफ कर पाएगी? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।